ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायः सभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम स्कंध आठ अध्याय बीस श्लोक संख्या 23। रसामतष्टाङ्घ्रितलेथ पादयोर् महीं महीन्द्रान् पुरुषस्य जङ्घयो पतत्तिणो जानुन् विश्वमूर्ते पूर्वोर्गणं मारुतमिन्द्रसेना दशामतष्टाङ्घ्रितलेथ पादयोर् महीं महीन्द्रान् पुरुषस्य जङ्घयो सतत्रिणो जानुन् विश्वमूर्तेर् पूर्वोर्गणं मारुतमिन्द्रसेना दशामतष्टाङ्घ्रितलेथ पादयो महीं महीन्द्रान् पुरुषस्य जङ्घयो पतत्रिणो जानुन् विश्वमूर्तेर् पूर्वोर्गणं मारुतमिन्द्रसेना।
बाहर गए थे मंगल आरती नहीं आई थी पढ़िए।
माता जी शब्दार्थ रसाम अधोलोक अधोलोक बोलते बोलिए अधोलोक अचष्टा देखा अंगी तले पांव के नीचे तलवे के नीचे अथ तत्पश्चात पादयो पांवों पर महीन भूमि को महीन पर्वतों को पुरुषस्य विराट पुरुष की जंघयो पिंडलियों में पतचिण उड़ने वाले जीव जानुनी घुटनों पर विश्वमूर्ते विराट भगवान के रूप का उर्वो जांघों पर गणमारुतम वायु के प्रकार इंद्र सेनह बलि महाराज जिसे इंद्र के सिपाही मिल गए थे और जो इंद्र पद पर आसीन थे। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की तत्पश्चात राजा इंद्र के आसन पर आसीन बलि महाराज ने अधोलोकों को यथारसातल को भगवान के विराट रूप के पांव के तलवे पर देखा। उन्होंने भगवान के पांव पर पृथ्वी को पिंडलियों पर सारे पर्वतों को घुटनों पर विविध पक्षियों को तथा जांघों पर वायु के विभिन्न प्रकारों मरुदगण को देखा। अभी दोहराएंगे। तत्पश्चात राजा इंद्र के आसन पर आसीन बलि महाराज ने अधोलोकों को यथारसातल को भगवान के विराट रूप के पांव के तलवों पर देखा। उन्होंने भगवान के पांवों पर पृथ्वी को पिंडलियों पर सारे पर्वतों को घुटनों पर विविध पक्षियों को तथा जांघों पर वायु के विभिन्न प्रकारों को देखा। तात्पर्य यहाँ पर भगवान के विराट रूप की पूर्ण रचना के प्रसंग में विश्व की स्थिति का वर्णन है। इस विराट रूप का अध्ययन तलवों से शुरू होता है। तलवों के ऊपर पैर, पैरों के ऊपर पिंडलियां तथा पिंडलियों के ऊपर घुटने तथा घुटनों के ऊपर जांघें होती हैं। इस तरह विराट शरीर के सारे अंगों का एक एक करके वर्णन हुआ है। घुटनों पर पक्षियों का स्थान है और उसके ऊपर मरुदगण हैं। पक्षी पर्वतों के ऊपर उड़ सकते हैं और पक्षियों के ऊपर वायु के विविध प्रकार होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की दशामचाष्टांगी तले थपादयो मही महीन्द्रान पुरुषस्य जंघयो पतत्रिणो जानुनि विश्वमूर्ते पूर्वोर्गणम मारुति मारुतमिन्द्र सेन। यह श्लोक श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि किस तरह से यज्ञ मंडप में बलि के भगवान बटु बामन के रूप में गए, बटुबा मनोव्यात, ऐसे नारायण कवच में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि स्थले सुमाया बटुबा मनोव्यात त्रिविक्रम खेवत विश्वरूप। भगवान जब स्थल पर थे, या इसमें कहा गया कि स्थल पर हमारी रक्षा कौन करेंगे तो बामन देव, आकाश में कौन रक्षा करेंगे त्रिविक्रम रूप से। भगवान त्रिविक्रम रूप से पूरे आकाश को भर दिए थे, जन लोक तप लोक महर लोक सत्य लोक सब उनके अंदर समाहित हो गया था। भगवान जब अपना त्रिविक्रम रूप धारण किए तो हर वस्तु भगवान के अंदर समाविष्ट हो गई। ये भगवान ने अभी दिखाया कि हर वस्तु भगवान में है, या हर वस्तु भगवान की है, कोई भगवान को क्या दे सकता है। बलि पहले कह रहे थे कि मांगो, मैं त्रिलोकी हूँ, तीनों लोकों का राजा हूँ। बलि महाराज कह रहे थे प्रारंभ में, त्रिलोकी भगवान है, लेकिन उनके सामने बलि महाराज कह रहे थे कि मैं तीनों लोकों का राजा हूँ, तुम तीन पद क्यों मांग रहे हो। मांगना है तो कोई राष्ट्र मांग लो, कोई बड़ा साम्राज्य मांग लो, तुम्हें मैं बड़ा भूभाग दे सकता हूँ, भारतवर्ष जैसे अनेक देश तुम्हारे नाम से कर सकता हूँ, मैं तीनों लोगों का अधिपति हूँ। भगवान वामन जो खुद स्वयं त्रिलोकी हैं, हर वस्तु उनमें ही है, हर वस्तु के वही रचनाकार हैं, वही पालन करते हैं, वही सृजन करते हैं और संहार करते हैं। ऐसा भगवद गीता भगवान का हम सर्वस्व प्रभव, मैं सब कुछ उत्पन्न करता हूँ। यह हर वस्तु पर भगवान का अधिकार है, चाहे छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु हो, ईशावास्तम इदम सर्वम, सब वस्तु ईश्वर की संपत्ति है, इस संपत्ति है, ईशावास्तम इदम सर्वम यत किंचित, छोटी से लेकर के बड़ी वस्तु तक, यत किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में जो भी वस्तु है सब भगवान की है। लेकिन बलि महाराज कह रहे हैं कि तीनों लोकों पर हमारा आधिपत्य है, तुम तीन पद क्यों मांगते हो और मेरे यज्ञ में आए हो, और तुम योग्य ब्राह्मण लगते हो, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण हो, बटुबामन एक बौना ब्रह्मचारी के रूप में गए थे, बटुबामनो व्यास, और इतना सुंदर बालक का रूप धारण किए थे, उनके मुखमंडल से तेज झलक रहा था। तो बलि सोचे कि ऐसे योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए, दान पात्र को देने से दान की महत्ता बढ़ जाती है, वो भी यज्ञ में तो दान किया जाता है, पुरोहितों को, ब्राह्मणों को, ऋषिकों को, जितने भी पुरोहित थे यज्ञ में सबको बलि महाराज दान दे रहे थे, तो ऐसे योग्य पात्र को क्यों नहीं दान देंगे, जब सबको दान देने के लिए ही यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ दान तप यज्ञ में क्या होता है? भगवान विष्णु के लिए आहुति दी जाती है, ब्राह्मणों को दान में हर भूमि, गोदान, भूमि दान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, अन्न दान, सब प्रकार के दान किए जाते हैं। तो ऐसे योग्य पात्र स्वयं भगवान ही आए हैं एक छद्म रूप में बलि को छलने के लिए। प्रसन्न अपने स्वर्ग को प्रसन्न करके छोटा रूप में आए थे, लेकिन फिर भी उनका तेज जो है चमक रहा था। जैसे बादल में भी सूर्य ढक जाता है फिर भी प्रकाश रहता है, अंधेरा नहीं होता है, पूर्ण रूप से अंधेरा नहीं होता है। दिन में बादल छा जाता है तो भी पूर्ण रूप से अंधकार नहीं होता है, फिर भी सूर्य का प्रकाश छन कर आता है। तो भगवान भले छद्म रूप में एक बमना का रूप धारण किए थे, फिर भी उनके शरीर से तेज जो है निकल रहा था, सूर्य से किरणें निकल ऐसे निकल रहा था। तो बलि समझे कि ऐसे योग्य पात्र को दान देना चाहिए। दान कहाँ देना चाहिए? जैसे दान पात्र है, मंदिर में भी पात्र रखा गया है, दान पात्र लिखा है, कहीं लिखा है कचरा पेटी है, तो मूर्ख जो व्यक्ति होगा कचरा पेटी में डाल देगा। जो नहीं जानता है कि ये दान कचरा पेटी है कि दान पेटी है, तो हर वस्तु का कहाँ प्रयोग है, पैसा डालना है तो दान पेटी में लोग डालते हैं, पूछते हैं कि कहाँ डोनेशन बॉक्स है, कचरा डालना हो तो लोग ने कचरा पेटी कहाँ है। तो पात्र में देने से उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे नीति शास्त्र में कहा गया है वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापिच, वृथा वृष्टि समुद्रेशु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापिच। दिन में कोई दीपक जलाता है, दिन में दीपक जलाने का महत्व नहीं है, रात्रि में अगर कोई जलाता है तो उसका महत्व है। समुद्र में वर्षा हो तो महत्व नहीं है, लेकिन वही खेती में हो तो उसका महत्व होता है। वही तृप्त आदमी को भोजन कोई खिलाए तो उसका महत्व नहीं, कोई यहाँ तक खाया है, आकंठ भोजन कर लिया है, उसको कहिए कि आपको हम प्रसाद खिलाना चाहते हैं, तो महत्व वो नहीं देगा, वो उस प्रसाद का या भोजन का महत्व नहीं दे सकता। अगर भूखा होगा, भूखा व्यक्ति होगा कहेंगे तो उसका महत्व है। उसी तरह पात्र स्वयं भगवान, भगवान सबसे बड़े पात्र हैं। भगवान जो है वही सबसे बड़े पात्र हैं, उन्हीं को देना चाहिए। भगवान के बाद फिर साधु वैष्णव अतिथि, लेकिन सबसे बड़े पात्र भगवान हैं। इसलिए भगवान गीता में कहे भी हैं कि कुछ देना हो तो मुझे दो, यत करोषि यदत नास्ति यद जहोसी ददासी यत यद तपस्सी कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान खुद कह रहे हैं कि दान देना है तो तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझे अर्पण करो, मत अर्पणम, मदर्पण माने मुझे अर्पण करो, स्पष्ट भगवान कहते हैं दान देना है। तो बलि के यज्ञ में इस तरह से जब भगवान गए तो संकल्प तो कर ही लिए थे, जबकि शुक्राचार्य कहे कि जानते नहीं हो ये बौना रूप में भगवान है, तुम्हारा सब ले लेंगे। शुक्राचार्य बड़े विद्वान हैं और सब कुछ जानते हैं, सब जान गए थे कि ये विष्णु हैं, और बलि से साम्राज्य लेकर के अदिति के पुत्रों को दे देंगे, श्री राधारास बिहारी जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो बलि महाराज यद्यपि कहे कि ये विष्णु है, ये तुम्हारा सब ले लेंगे, और यद्यपि तुम जो संकल्प लिए हो तीन पग देने के लिए वो भी नहीं दे पाओगे, इसलिए मन दो। मैं जानता हूँ देवताओं का कार्य बनाने के लिए आए हैं और धर्म अर्थ काम की शिक्षा दे रहे थे। शुक्र नीति प्रसिद्ध है तो शुक्राचार्य की गृहस्थ के लिए धर्म अर्थ काम, तो अर्थ रहेगा तभी धर्म कर सकता है। तुम्हारा सब ले लेंगे तो फिर तुम धर्म कैसे करोगे? गृहस्थ के लिए जरूरी है धर्म रहना। तुम ब्रह्मचारी से झूठ बोल दो, जो संकल्प लिए हो कह दो कि मैं नहीं दूंगा। बलि महाराज से कहे कि ये और कोई नहीं है, विष्णु ही है। तो कहे कि देखो कभी कभी अपना धन बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। कोई मांगने आता है और आपको विश्वास है कि आदमी लेने के बाद नहीं देगा तो झूठ बोल सकते हैं कि नहीं है, या व्यवसाय में झूठ बोल सकते हैं। शुक्र नीति प्रसिद्ध है शुक्राचार्य करे कि कभी कभी झूठ बोल सकते हैं। कहाँ झूठ बोल सकते हैं? तो शिशु नर विवाहे चित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम नामृतम कार्य जुगुप्सितम। इस जगह पर झूठ बोलना पाप नहीं है। शुक्राचार्य तो महान है और सब कुछ जानते हैं तो बता दिए, भगवान वामन की योजना को बता दिए कि ये बात है। सारी योजना बता दिए थे कि अदिति ने व्रत किया था, पयोव्रत किया था, उस पयोव्रत के तदुपरांत भगवान स्वयं उसके पुत्र बनकर आए हैं उपेंद्र के रूप में, इंद्र के छोटे भाई वामन। और ये आए हैं क्योंकि अदिति बहुत निराश हो गई जब उसके पुत्र स्वर्ग से भगा दिए गए, तो पुनः वो व्रत करके अपने पुत्रों को स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त करने के लिए इनको पुत्र रूप में प्राप्त किया है। ये जो वामन रूप में है और कोई नहीं, स्वयं भगवान है, और सब कुछ ले लेंगे। लेकिन बलि महाराज बहुत प्रसन्न हुए सुन करके, स्वयं भगवान अगर आए हैं तो भगवान तो हर वस्तु के स्वामी है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो युद्ध करके भी ले सकते हैं। भगवान को अगर लेना ही है तो युद्ध करके मार करके भी बलि को ले सकते हैं। इससे अच्छा है इनको दे करके भक्ति जस प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर बलि महाराज नहीं देते तो उनका संकल्प भी झूठा होता है और इतिहास में उनका नाम जो है झूठ बोलने वालों में हो जाता कि बलि जो है झूठ बोला है या कह करके बात से मुकर गया है, तो इनको अपयश प्राप्त होता, अपजस मिलता, अपने वचन को पालन नहीं करने का भी दोष लगता। कोई व्यक्ति जब किसी को वचन दे देता है तो वचन पर अपने अडिग रहना चाहिए। बलि महाराज कहे मैंने वचन दे दिया है तो जो भी हो मैं इनको दूंगा। किसी को आदमी कुछ कह देता है तो उसको पूरा करता है, पालन करता है। पहले लोग, आज भी लोग जो कहते हैं वो पालन करते हैं, और जो कह कर कहता है नहीं मैंने नहीं बोला है, झूठ बोल देता है, तो झूठ बोलना बड़ा पाप है। यहाँ पीछे के श्लोक में कहा गया है कि बलि महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप ये अभी देख सकते हैं कि संसार का सारा भौतिक स्वर्ग उसके स्वामी की मृत्यु के समय निश्चित रूप से विलग हो जाता है। अतः यदि ब्राह्मण वामन देव दिए गए उपहारों से तुष्ट नहीं होते तो क्यों न उन्हें उस धन से तुष्ट कर लिया जाए जो मृत्यु के समय चला जाता है। असत्य से बढ़कर, बलि महाराज कह रहे हैं, बलि उवाच, और सत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था, माता पृथ्वी ने क्या कहा था कि मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किसी झूठ व्यक्ति को नहीं। बलि महाराज अपने संदर्भ में कह रहे हैं कि मैं अगर झूठ बोल दूं कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा तो ये बहुत बड़ा पाप है, और वो भी हम संकल्प कर लिए हैं। तो संकल्प कर लिए हैं तो अब देंगे, जो होगा जो भी होगा इनको देना ही है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो बहुत बड़ा पाप है। पृथ्वी पर अनेक विशाल पर्वत तथा सागर हैं जो अत्यंत भारी हैं। पृथ्वी पहाड़ समुद्र सबका भार ढो सकती है, लेकिन पृथ्वी ने क्या कहा है? मैं झूठे व्यक्ति का भार नहीं ढो सकती हूँ। अरे व्यक्ति कितना होगा? 100 केजी का हो सकता है, 50 केजी का हो सकता है, 60 केजी। पृथ्वी समुद्र के पर्वत के भार को ढो सकती है, लेकिन झूठे व्यक्ति के भार को नहीं ढो सकती। मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किसी झूठे व्यक्ति को नहीं। इसलिए बलि महाराज कहे कि मैं अब तो संकल्प ले लिया हूँ, अब इनको देना ही। अगर आप कह रहे हैं कि विष्णु हैं तो इनको तो अवश्य देना चाहिए, ये भगवान विष्णु ही है तो हर चीज इन्हीं का है। अगर मैं नहीं देता हूँ तो भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान चाहें तो छप्पर फाड़ कर ले सकते हैं, भगवान छप्पर फाड़ कर देते भी हैं, और लेना चाहें तो छप्पर उघाड़ कर भी ले सकते हैं। तो ऐसे भगवान को नहीं देना ये तो सबसे बड़ा अपजस है, इसलिए दे करके जस ले लेना चाहिए। इसलिए बलि महाराज कहते हैं कि देखिए, हर वस्तु नश्वर है, ये देह भी नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, हमारा साम्राज्य भी नष्ट हो जाएगा। तो क्यों नहीं इस नश्वर वस्तु को भगवान को दे करके हम जस प्राप्त कर लें। हर वस्तु एक दिन चलायमान हो जाता है, चला जाता है आदमी को छोड़ करके। चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन जवनम, हर वस्तु चलायमान है, चलता है। ये धन जवमन पुत्र परिजन इते किया छिपरती तीरे, कमल दल जल जीवन चलमल भजहुं हरिपद नीतिरे। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए, बाकी जो वस्तुएं हैं वो तो साथ छोड़ देती हैं, शरीर भी चला जाता है, पद और साम्राज्य तो दूर की बात है, शरीर ही एक दिन साथ नहीं देता है। अब धन को या पद को कितना समय तक संभाल कर रखेंगे? बलि महाराज कह रहे हैं कितना समय तक, जब तक शरीर है, शरीर से जुड़ा हुआ पद है, धन है, रूप है, लेकिन कभी कभी शरीर से पहले ही पद चला जाता है। और नहीं मान लीजिए है भी तो शरीर के जाने पर सब समाप्त हो जाता है। तो पद गया तो क्या गया, और धन गया तो क्या गया, शरीर जब चला गया तो सब कुछ है, शरीर के साथ सब चला जाता है। तो ही बलि महाराज कहते हैं एक दिन शरीर ही चला जाता है तो धन के लिए क्या इतना प्रयास करना है, और वो भी स्वयं भगवान आए हैं, सबसे बड़े योग्य हैं, इनसे बड़ा पात्र और कौन होगा। इसलिए दान देना ही है तो डोनेशन बॉक्स में डालना है, ये पात्र है, दान पात्र है। तो भगवान सबसे बड़े दान पात्र हैं, उनको दान दिया जा सकता है। मैंने कहा कि गीता में भगवान कहे कि तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझे दान दो, ददाति यत्। तो भगवान जब कहेंगे कि भगवान को दान देना चाहिए तो उसी नीति के अनुसार बलि महाराज ने गुरु शुक्राचार्य से कह रहे हैं कि अब जिनको न दें तो और किसको देंगे, यही योग्य पात्र हैं। आगे जब देने की बात आई तो भगवान अपना विराट रूप प्रदर्शन कर दिए। पहले वामन रूप में बटुबा मनोव्यास एक बौना ब्रह्मचारी के रूप में आए थे यज्ञ मंडप में, और संकल्प होने के बाद दान लेने के लिए विराट रूप दिखा दिए। विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कि भगवान वामन देखते देखते पूरे विश्व में ब्रह्मांड में भर गए। जो वस्तु अलग दिखाई देती थी अब उनके शरीर में दिखाई देने लगी, समुद्र उनके नाभि में, रसातल उनके तलवा में, पृथ्वी उनके पांव पर, पर्वत उनके पिंडलियों में, पिंडली इसको पिंडली घुटने के नीचे पिंडली बोलते हैं। हर वस्तु भगवान वामन देव के शरीर में दिखाई दे रही थी। रसाम अचाष्टांग, रसाम अचाष्टांग हृतले थपा दयो, रसातल जो है नीचे भी कई लोग हैं, तल अतल बीतल सुतल महातल पताल अनेक लोग हैं। तो जो रसातल है रसाम अचाष्टांग, रसाम अचाष्टांग हृतले थपा दयो, भगवान के तलवे पर क्या दिखाई दे रहा था? रसातल, तलवे में रसातल दिखे थे, इसमें रसा मचाष्टांघ्री अंघ्री तले, अंघ्री तले मतलब उनके तलवे में, पादयो माने दोनों पैरों पर, पादयो बहुवचन है, द्विवचन है, पादे द्विवचन है, दोनों चरण कमलों के तलवे में, महीन महीन्द्रान पुरुषस्य जंघयो, देखिए वो विराट पुरुष के मही मतलब पृथ्वी, मही धारान माने पर्वत, मही माने पृथ्वी, मही धारान माने पर्वत, पर्वत को महीधर बोलते हैं। बलि महाराज ने देखा कि अधोलोक माने नीचे के लोक, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्व माने ऊपर के लोक, तो जो अधोलोक हैं यथा रसातल, तो भगवान विराट रूप के पांव के तलवों पर दिखाई दे रहे थे और भगवान के तलवे के ऊपर पांव पर पृथ्वी दिखाई दे रही थी। तो भगवान का पांव कितना बड़ा होगा आप कल्पना कीजिए, समग्र पृथ्वी जो है भगवान के पांव पर भगवान का पांव कितना बड़ा है, विराट रूप का पांव जो है कितना बड़ा होगा अनुमान लगाइए। और मही धारान पर्वत कहां पर दिखाई दे रहे थे, भगवान के पांव पर पृथ्वी को, पिंडलियों पर सारे पर्वतों को, सारे पर्वत कितने पर्वत हैं। और घुटनों पर विविध पक्षियों को, बहुत बड़े बड़े पक्षी हैं, जैसे गरुड़ हैं और शार्दुल पक्षी, ये ऐसे गौरैये कबूतर कौवे नहीं, बड़े बड़े पक्षी हैं, जैसे नाग लोक में बड़े बड़े नाग हैं वैसे पक्षियों का भी लोक है त्रियक लोक, जहाँ बड़े बड़े पक्षी हैं जो हाथी को भी अपने पंजे में उठा लेते हैं। जैसे शार्दुल पक्षी पहले पाए जाते थे पृथ्वी लोक में भी, तो अपने पंजों में हाथी को भी पकड़ लेते हैं। तो बड़े बड़े पक्षी गरुड़ इत्यादि भगवान के घुटनों पर दिखाई दे रहे थे और जांघों पर वायु के विभिन्न प्रकार। वायु के देवता कौन है? मरुदगण। मरुदगण कितने हैं? 49 मरुदगण जो है दिखाई दे रहे थे। तो मरुदगण भी अदिति के ही पुत्र हैं, दिति के पुत्र हैं, दिति के पुत्र हैं लेकिन देवता माने गए। जब दिति ने व्रत करके गर्भ धारण किया था तो ऐसा संकल्प किया था कि मुझे ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मारने वाला हो। दिति जो दैत्यों की माता है, तो जब गर्भ धारण की थी तो इंद्र को यह गोपनीय बात मालूम थी कि दिति हमारी जो सौतेली माँ है ये मुझे मारने के लिए एक ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए व्रत किया है, और वो पुत्र जो है गर्भ में आ गया था दिति के। तो इंद्र छद्म रूप में जाकर दिति के नौकर बनकर सेवा करते थे, घर में नौकर नौकरानी होते हैं, तो दिति के पर्सनल सेवा में रहते, पानी लाना ये करना, इस ताक में रहते थे कब ये व्रत में कोई गलती हो जाए। व्रत का जो नियम था तो देखते थे कि व्रत में कोई नियम भंग होगा तो गर्भ को मार दूंगा मैं। तो दिति के घर में रहते थे छद्म रूप में इंद्र। एक समय में दिति जो है कुछ खा करके बिना मुख धोए सो रही थी, खा करके जूठे मुंह सोना ये भी ये है, जो खा करके ब्रश नहीं करता है, मुंह नहीं धोता है, ऐसे सो जाता है तो भूत प्रेत इत्यादि बाधा उस पर आती है। या संध्या बेला में सोना, सूर्यास्त के समय में, सूर्योदय के समय में सोना, उस समय भी शिव जी के जो गण हैं, शिव जी के गण कौन है तो भूत प्रेत है, वो उस पर आ जाते हैं, भूत प्रेत की बाधा आ जाती है। तो दिति इस तरह से खा करके सो रही थी, उसी समय इंद्र जो है सूक्ष्म रूप में उसके गर्भ में प्रवेश करके ने वज्र से उस गर्भ को मार दिए। जब वज्र से मारे, अब बोलेंगे गर्भ में कैसे इंद्र गए और कैसे वज्र चलाए, ये भी एक सिद्धि है, योग सिद्धि है। जैसे भगवान उत्तरा के गर्भ में गए सूक्ष्म रूप से और गर्भ की रक्षा किए, परीक्षित की रक्षा किए, उसी तरह इंद्र जो है मारने के लिए, दिति के गर्भ को मारने के लिए सूक्ष्म रूप में जा करके वज्र से मारे, तो पहला सात टुकड़ा में विभक्त तो हो गया। जो गर्भ का जो उसको क्या बोलते हैं भ्रूण, जो भ्रूण था वो वज्र से मारे तो सात टुकड़ा में विभक्त तो हो गया, सात शिशु के रूप में। तो देखे कि बढ़ गए, तो फिर मारे तो 49 हो गए, सात सात और हो गए, सत सत 49 हो गए, तब फिर मारे नहीं कि तो और बढ़ रहे हैं। तब ये लोग गर्भ में ही प्रार्थना किए कि हे भाई मारो मत, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम हम लोग को मारो मत, हम लोग भले दिति के गर्भ में आए हैं लेकिन हम तुम्हारा बंधु बनकर रहेंगे, तुम्हारा ही मदद करेंगे। इसलिए दिति दैत्य परिवार में, दैत्य वंश में उत्पन्न होकर के भी मरुदगण देवता कहलाते हैं और इंद्र के भाई के रूप में कार्य करते हैं। ये कहीं भ्रूण 49 के रूप में, इसलिए 49 मरुदगण कहलाते हैं, क्योंकि दिति ने ऐसा व्रत किया था, उस व्रत के प्रभाव से वो भ्रूण जो है नष्ट नहीं हो रहा था वज्र से भी, व्रत का प्रभाव होता है। तो इसलिए वहां 49 मरुदगणों को देखा। बलि ने वायु के जो 49 प्रकार है, 49 देवता हैं, उनको जांघों पर देखा। ये नख सिख ऐसे वर्णन है कि कहां कहां क्या दिखाई दे रहा था, ऐसे भगवान के विराट शरीर में सब कुछ है, सारे देवता हैं। जैसे अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में विराट रूप देखे तो देख करके आश्चर्यचकित रह गए, उस विराट रूप में सब कुछ दिखाई दे रहा था। अर्जुन कहे कि हे प्रभु, मैं देख रहा हूं कि आपके शरीर में गर्भ समुद्र में गर्भोदक साई विष्णु हैं, और ऊपर देखता हूँ तो सत्य लोक में ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं जो कमल के ऊपर बैठे हैं। पश्यामि देवा सवदेव देह सर्वा तथा भूत विशेष संघान, समस्त प्राणियों में जो ब्रह्मा जी हैं श्रेष्ठ हैं आदि जीव हैं, वो उनको देख रहा हूँ। और नीचे जब देखता हूँ अधोलोक में तो गर्भोदक साई विष्णु को देख रहा हूँ। पश्यामि देवा सवदेव देह, हे देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को देख रहा हूँ। सर्वास तथा भूत विशेष संघान, तो पहला फिर नाम लेते हैं ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्थम, जो कमलासन कमल के ऊपर जो ब्रह्मा जी हैं कमलासन उनको देख रहा हूँ। ब्रह्मांड मीशम, इस ब्रह्मांड के जो ईश हैं ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड के संचालक हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड के अनेक वस्तुओं की रचना करते हैं, तो उनको देख रहा हूँ। ब्रह्मांड मिश्रम कमला सनस्थम, कमल के आसन पर स्थित हैं। विशिष्ट सर्वा, समस्त ऋषियों को देख रहा हूँ। अनेक ऋषि हैं, सप्तर्षि हैं और भी बड़े बड़े जो ऋषि हैं, कौन कौन ऋषि हैं, जैसे लोमस ऋषि, भृगु, वशिष्ठ, चवन, पिपलायन, कणान, गौतम, हाँ दुर्वासा, अनेक असित, देवल, व्यास, स्वयंभू, नारद, ये भी ऋषि हैं, देव ऋषि, नारद जी, अनेक ऋषि मैंने ऋषियों में प्रधान कहे देवर्षि, नारद तथा अनेक ऋषियों को देख रहा हूँ। अनेक ऋषि हैं, मार्कंडेय ऋषि, और सबसे बड़े आयु वाले कौन है, लोमस ऋषि, उनको भी देख रहा हूँ। जो उनका एक शरीर का रोम गिरता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग व्यतीत होता है, इतने लंबे आयु के हैं। तो यहाँ पर बलि महाराज भी देख भगवान के विराट रूप को देखे कि सब वस्तु उनमें समागी, तब दान क्या, दान क्या दे सकते हैं, अब दान क्या देंगे, भाड़, जब सब वस्तु भगवान में तब क्या करेंगे, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए, सारी वस्तुएं भगवान के अंदर दिखाई दे रही थी। मैंने जितने ये ब्रह्मांड क्या, अनंत ब्रह्मांड भी भगवान में है, कहा कि भगवान के छिद्र में, जैसे इसको रोम छिद्र बोल, जहाँ बाल होता है वहाँ छिद्र होता है, इसको रोम छिद्र बोलते हैं, तो भगवान के रोम छिद्र में अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं। तो ये ब्रह्मांड उनके अंदर अगर प्रविष्ट हो जाए तो क्या क्या आश्चर्य है, सारा वस्तु भगवान में दिख रहे थे सब कुछ, जैसे माँ यशोदा भगवान के मुख में ही सब कुछ देख रही थी। ब्रह्मांड घाट जहाँ पर भगवान ने ब्रह्मांड दिखाया था, महाबन गोकुल में आप लोग जाएंगे तो उस घाट यमुना जी के तट पर भगवान बाल लीला में माँ को मुख में ही ब्रह्मांड दर्शन करा दिया, मुख में ही सब कुछ दिखाई दे रहा था, और यहाँ शरीर में सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो बलि महाराज देख करके बहुत कृतकृत हो गए कि वास्तव में भगवान है, और भगवान को देना ही यही बुद्धिमानी है। यहाँ पर भगवान के विराट रूप की पूर्ण रचना के प्रसंग में विश्व की स्थिति का वर्णन है। इस विराट रूप का अध्ययन तलों से शुरू होता है, भगवान का तलवा जो है रसातल है, जैसे इसमें वर्णन हुआ, समुद्र उनका नाभि है, जो नाभि मानो समुद्र है, और जितने वनस्पतियां हैं उनके शरीर की रोमावली है, जितने भी पेड़ पौधे हैं मानो भगवान विराट के शरीर में रोम है, और सत्यलोक मानो सिर है, सत्यलोक सबसे ऊपर है, इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर है सत्यलोक, तो यहाँ पर भगवान के विराट रूप का सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में यही वर्णन है कि बलि महाराज क्या क्या देखे, तो सर्वप्रथम रसातल देखे और इसके पश्चात उनके पांव पर पृथ्वी को देखे, उनके पिंडलियों में पर्वत को देखे, उनके जांघों पर मृदगणों को देखे और बाकी और आगे आप देखेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रश्न है?
पब्लिक अगर कोई काटता है तो भगवान को दर्द करता होगा ना?
माइक में बोलिए, माइक में बोलेंगे तो सब लोग सुन सकते हैं।
आपने बताया कि जितने सारे पेड़ पौधे हैं वो सबके सब भगवान के शरीर के रोम हैं, तो अगर समाज में कोई पब्लिक अगर पेड़ पौधों को काटता है तो भगवान को भी दर्द होता होगा ना?
इनका प्रश्न है कि जैसे विराट पुरुष के शरीर में जो वनस्पति हैं उनके रोमावली हैं, बाल हैं, तो इनको अगर कोई काटता है तो उनको दर्द होता होगा। कभी कभी बाल खिलने से अच्छा भी लगता है शेविंग करने से, है कि नहीं? कभी कभी लोग शेविंग करते हैं तो अच्छा भी लगता है, अगर काट देंगे तो दर्द भी होता है। तो जो वनस्पतियां हैं भगवान के शरीर में हैं, इनको अनाधिकार रूप से अनावश्यक रूप से नहीं नष्ट करना है। जैसे पेड़ पौधों को भी अनावश्यक नहीं काटना, ये भी भगवान की संपत्ति है, उसका अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो पाप है। तो भारत सरकार का भी नियम है कि जो हरे वृक्ष को काटता है तो उसको दंड संहिता में दंड निर्धारित किया गया है। पेड़ पौधों को भी काटना वो भी दंडनीय है, अपराध है, इसलिए अनावश्यक उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे पानी है, पानी का भी दुरुपयोग, अनावश्यक पानी खर्च नहीं करना चाहिए। देखा जो जरूरत से ज्यादा पानी खर्च करता है तो भी अपराध है। हर वस्तु को जितना जरूरी है अगर उसका अपव्यय कोई करता है, दुरुपयोग करता है तो अपराध है। तो भगवान के शरीर में, विराट शरीर में ये वनस्पति रोम है, तो इसको भी क्षति नहीं पहुंचाना है। इसलिए शास्त्र में या पहले के प्राचीन राजा लोग पेड़ पौधों की भी सुरक्षा करते थे, वो भी प्रजा है, पेड़ पौधों का भी ख्याल रखना चाहिए। भगवान को तो एक चींटी मरती है तो भी दर्द होता है, क्योंकि सब भगवान के ही हैं, सारे जीव भगवान के ही होते हैं, भगवान सबके पिता हैं। तो हमारे ने पशु पक्षी जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी स्थावर जड़ सब भगवान के संतान हैं, तो भगवान के संतति को नुकसान करना अपराध है। भगवान को ये होता है, दर्द होता है, इसलिए भारत सरकार अब पेड़ लगा के योजना बनाई है कि पेड़ लगाना चाहिए। हर आदमी को एक पेड़ काटता है तो कम से कम तीन पेड़ लगाना चाहिए। मान लीजिए आपको जरूरी है एक पेड़ काटना, तो काटते हैं तो तीन पेड़ लगाना भी चाहिए। केवल आप काट रहे हैं तो अपराध है, लगाना भी चाहिए। किसी ने लगाया है तब हम उसे फल फूल लकड़ी या जो भी औषधि जड़ी बूटी हम प्राप्त करते हैं, तो हम जो कुछ अभी प्राप्त कर रहे हैं वो किसी और पहले ने लगाया है। जैसे यहाँ ये पेड़ कोई पहले लगाया है, जैसे बेल का फल है, तो जो लगाया है वो तो फल नहीं खाया होगा या खाया भी होगा, लेकिन ज्यादा हम लोग सेवन कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी लगाना चाहिए कि भविष्य के आने वाले लोग उसका सेवन करेंगे। और जो केवल काटते हैं तो बहुत बड़ा ये है, अपराध है, लगाना भी चाहिए। एक पेड़ काट रहे हैं तो तीन लगाइए। अल बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हर जगह कंक्रीट और बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो रही हैं, पेड़ पौधे सब कम हो रहे हैं। पेड़ पौधे जो है एटमॉस्फेयर को कूलिंग करते हैं, कूल रखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। इसलिए भी हमारे लिए पेड़ पौधे भी जरूरी हैं, हमारे वो भी सहायता करते हैं लगाना चाहिए। ठीक है, हनुमान जी के पास।
हरे कृष्णा। बंगाली में कहावत है, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो यद्यपि इंद्र ने दिति के गर्भ में जाकर अमोघ वज्र का प्रहार किया तो एक गर्भ सात टुकड़े हुए, सात हो गए, सात को वापिस तो काटा 49 हुए, तो वो मरे नहीं, क्योंकि जब तक प्रभु की अनुमति नहीं है कोई किसी को मार नहीं सकता है। हरे कृष्ण।
सही, अच्छा कमेंट किए कि मरुद्गणों को इंद्र नहीं मार सके, इसलिए इंद्र भी ये हो गए कि ये मर नहीं सकते हैं। ऐसे भी भगवान की तो कृपा थी, और दिति ने तपस्या भी किया था, भगवान की आराधना किया था। पूछिए, माइक दीजिए।
हरे कृष्ण। जैसा कुरुक्षेत्र मैदान पे भगवान कृष्ण जब विश्वरूप दिखाए तो विशिष्ट कुछ व्यक्ति देख पाए, जब पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, पांडव लोग सभी नहीं देख पाए भगवान का विश्वरूप को। जैसा वामन देव जब अपना आकार विस्तार किए तो सब ब्राह्मण लोग देख पाए ना, खाली बलि महाराज अकेला देख पाए।
वहां पर विश्वरूप जब वामन देव दिखाए तो बलि देख रहे थे, उनकी पत्नी भी देख रहे थे, उनकी पुत्री भी, बल्कि उनकी पुत्री को तो बहुत गुस्सा आया कि ये बामन रूप बनाकर आया था और अभी ऐसा हमारे पिताजी ने चीटिंग कर दिया, चीट कर रहा है। कुछ लोग देख रहे थे, जैसे कुरुक्षेत्र में भी कुछ लोग देखे थे, विदुर जी देख रहे थे, विदुर जी इस विश्व रूप को प्रशंसा कर रहे थे, तो धृतराष्ट्र कहे कि मेरे भी नेत्र होते तो देखता। तो विदुर के निवेदन करने से कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गया था, है ना समझ लीजिए। ऐसे रश्मि रथी में दिनकर जी ने भी लिखा है कि उस विश्व रूप का, महाभारत में भी है कि विश्व रूप का प्रशंसा विदुर जी कर रहे थे। तो धृतराष्ट्र कहे कि मेरे भी नेत्र होते, विदुर जी ने प्रार्थना किया तो धृतराष्ट्र को भी आंख मिल गया था देखने के लिए। तो बहुत कम लोग देखे, अर्जुन देखे, विदुर देखे, धृतराष्ट्र देखे, और कुछ लोग देखे होंगे, बहुत पांच पांडव देखे, जो बहुत कम ही लोग देखे। ऐसे महाभारत में लिखा है कि भगवान के उसे स्वर्ग में रूप को बहुत गिने चुने लोगों ने ही देखा। हाँ, देवता लोग देखे होंगे, तो यहाँ भी सब लोग नहीं देख रहे, लेकिन अधिकांश लोग देख रहे थे, देवता लोग भी देख रहे थे भगवान के, जब माप रहे थे तो देख रहे थे। ऐसे तो भगवान कहते हैं कि मैं सबके सामने अपने को नहीं प्रकट करता हूँ, ना हम प्रकाश सर्वस्व, अपने भक्तों के सामने प्रदर्शित करते हैं। तो आगे आएगा कौन कौन लोगों ने देखा है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।